کام میں لگ گئے. کیا کر رہا
تھا
انہوں نے؟ کام نہیں. جگت ہو تو جگت کیسے ہو؟ اس لیے پہلے انہوں نے من سے کچھ مانسی سیکھی, جیسے نارد جی, مریچی, وشیشٹھ, پولا, کرپو, انگیرا, وشیشٹھ کا نام لیا ہے, گوتم, یہ سب جو ہیں من سے یہ انہوں نے کیا کی اور یہ پر ہمارے جیسا ہی ہو تو وہ لوگ من سے ان چیز کی جہاں اچھا کی اور ہو گئی. اس لیے ان کو مانس پتر کا نار دو نار سے یہ مانسی سرشتی آیا تھا تو ان کے گلے سے نکل گئے. گلے سے مانے ان کے گلے میں وید اور سور برہم ہے, اس لیے یہ سور برہم کے اوتار مانے جاتے. نار ایک تو ان کے نار سے نکلے, نار مانے گلا, اور گلا سے نکل کر کے, گلا سے نکلنے کا مانے کیا, ان کے گلے میں جو کچھ ہے کنٹھہار کے روپ, کیا کنٹھہار, ہر بیت کا ساتھ, یہ سب لے کر کے کرشن کیرتن کرتے ہوئے وہ پرکٹ ہوئے. اس لیے نارد سبھاؤ سے ہی وہ بھکت تھے. یہ پہلے جنم کی بات کرتا ہے. اور ایسے ہی گان کرتے ہوئے ان کا بالیاپن اتیادی نہیں ہے, کشور روپ میں بڑے سندر روپ میں نکل کر کے کیرتن کرتے ہوئے اور وہ وہاں سے چلے گئے اپنے کام میں. دیکھی سے برہما جی کا درشن کرتے تھے اور سب سمے سر سنسار میں وہ کرشن نام کے کہنے.
اب یہ برہما جی کے پتر ہوئے انہوں نے جب
وہ سبھی
سبھی کے سبھی
سبھی
ان سب کے لیے برہما جی ان کے گرو تو نہیں مانے جائیں گے؟
اب ان سے نکلے ہیں ان کے
پتر تو ٹھیک,
وہ پتر ہیں اس لیے سبھی لوگ ان کو پتامہ کہتے ہیں. برہما جی کا ابھیمان ہے یہ ہمارے پتر ہیں. انہوں نے سب کو یہ کہا کہ تم لوگ سرشتی پر, اب انہوں نے تو کیا تھا مانسی سرشتی, ان کو کہا کہ تم کچھ مانسی استریوں کو بھی بنایا بلایا اور کہا کہ تم لوگ اس سرشتی کو آگے بڑھاؤ. وشیشٹھ جی نے مان لیا, اتری جی نے بھی مان لیا, اتری جی نے وواہ کیا انسویا
پھر مانسی,
وہ پرتھم منو کی کوئی پہلے منو کو منش اپنے مانس سرشتی سے ان کی کشیپ اور ادیتی یہ جس کو ان کے پتر جو منو ہوئے یہ لوگ ایسے میتھنی سرشتی سے نہیں پیدا ہوئے. کوئی برہما جی نے ان کو بھی سرشتی کشیپ ادیتی اس سے کچھ لڑکیاں اور لڑکے ہوئے اور پھر اس کے بعد میں سمبھو منی ہوئے برہما جی کے, پھر ان سے بھی کچھ منسی ہوئے. اس کے بعد میں یہ سرشتی جو ہم لوگوں کی ابھی چل رہی ہے اس کے لیے ان لوگوں کو بھاگ دیا. اس لیے وشیشٹھ جی نے ارندھتی کو اور اتری نے نہیں وشیشٹھ جی نے وشیشٹھ جی کی پتنی کی یاد نہیں نام ہے کیا نام
وشیشٹھ
اروندھتی اور وہ اتری کی
انسویا
اور ایسے ہی رشیوں کی سب, کنتو نارد جی نے مانا نہیں, کہ تو ہماری بات نہیں مانے گا تو ہم تو کرشن کا بھجن کریں گے اور زبردستی. جب انہوں نے نہیں مانا کہ تم ہماری بات نہیں مانتا تو جاؤ تم ابھی گندھرو ہو کر کے جنم لو اور اس میں تم کو 7000 گندھرویوں سے شادی کر کے شادی میں نے ویسے رہ کر کے تم کو اس بھوگ نہیں جانا. اے او مستو کنتو آپ کا آدیش پالنیہ نہیں ہے کیونکہ بھگوت بھکتی سے یہ رہت کرنے والا ہے. ہم دوسرے جنم میں جائیں گے کنتو جان بوجھ کر کے ہم اس سے ساتھ چکر. اب وہ کچھ سمے کے بعد میں گندھرو ہو کر کے ان کا نام ہوا کون گندھرو. हमारा मुझे याद नहीं आ रहा, वो गंधर्व होकर के थी। गंधर्वियां बड़ी सुंदरी, गंधर्व माने बहुत ही सुंदर जाति, बहुत सुंदर, और राग रागिनी के वाद्य के ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं,
गायन कला,
गायन कला, नृत्य कला में, और बड़े सुंदर सुरू, गला मीठा आवाज। तो वो पूर्व जन्म के अभिसंपात से उनके साथ में कुछ वर्ष तक रहे। रहने के बाद में उन्होंने सोचा जी से पूर्व जन्म का संस्कार तो भक्ति का, भक्ति के ऊपर में कोई भी अभिसंपात इत्यादि काम नहीं कर सकता, ये स्थूल शरीर पर काम करता है, भक्ति पर कुछ नहीं। कोई असुर हो जाने पर, भिक्ष होने पर उसकी भक्ति एकदम जैसे की तैसी रहेगी, भक्ति पर नहीं। इसलिए स्थूल शरीर से तो वो हो गए, और इस स्थूल शरीर का जो वांट है, डिजायर जल्द वर्ल्डली तक खाना पीना और ये सब, ये तो रहेगा, किंतु भक्ति जैसी की तैसी रहेगी, बल्कि और बढ़ी। उन्होंने सोचा जैसे ब्रह्मा जी ने हमको ऐसा कर दिया, तो अब हमको क्या करना। बाई चांस एक दिन ब्रह्मा जी का आदेश आया, हमारा यज्ञ हो रहा है पुष्कर में, तुम दलबल के साथ में, गंधर्व और गंधर्वियों के साथ में वहां पर नृत्य और गान परिवेशन करो, सब लोगों को चित्त मनोरंजन कर। जब जब समाप्त हो जाएगा तो भगवान के लीला को गुणगान गायन करके सब लोगों को चित्तरण सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। आज मौका आया और वहां जाकर के भगवान का गुणान बात करने के पश्चात उन्होंने कुछ ऐसी अश्लीलता की जिससे ब्रह्मा जी कुछ नाखुश हो गए। उन्होंने अर्धनग्न अवस्था में कुछ ऐसे पोज किए जो उनको मनोपी। उन्होंने सोचा कि इन्होंने तो यही हमको अभी संपात दिया इसी काम के लिए, और यही काम यदि कर रहा हूं तो इनको क्यों क्रोध हो रहा है। आ रहा है समझ में, हमको गंधर्व के लिए क्या, गंधर्वों का यही काम है। तो उसमें बहुत लोगों को बहुत रुचकर हुआ, किंतु ब्रह्मा जी को खराब लगा। ब्रह्मा जी ने कहा जी अभी संपा दे जाओ, तुम शुद्ध होकर के जाओ, बस एकदम नित्य करने लगे आनंद में जी लोगों, अब हमको स्वीकार करो। ये इनका तीसरा जन्म शुद्ध रानी के गर्भ से जन्मी, और उसी समय में वो भक्ति जो प्रबल कारण उनके अंदर में थी उसके वजह से भगवान ने कृपा करके चतुर्सन को, जो कि पीछे से वो भी मानस पुत्र थे, और उनको भी उन्होंने कहा था ब्रह्मा जी तुम सांसारिक सृष्टि करो, तो उन्होंने माना नहीं, तो वो ज्ञानी थे इसलिए उनके अभिसंपात को उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया। अभिसंपात दो प्रकार के होते, किसी ने कह दिया जे जाओ तुमको ये होगा, कहो तुम्हारा अभिसंपात तुम ही को लगे हमको भी तो वैसा यदि प्रबल होगा ना तो ऐसा हो जाएगा। या जैसे चित्रकेतु महाराज जी को पार्वती ने अभिसंपात दिया, शिव जी इस पर दंग रहे, इसने अभिसंपात दे दिया, किंतु उन्होंने कुछ नहीं हंस करके उन्होंने ग्रहण कर, ये भक्तों का जी बदले में भावना नहीं, देश नहीं है, वो जानते हैं कि भक्ति तो नित्य है, इस पर तो ये अभिसंपात का कुछ होगा नहीं असर, हम बेकार का क्यों उसको ऐसा करें। तो ये बड़ा चीज है ना, इसलिए उन्होंने देखा जी हमारी भक्ति तो बिगड़ी नहीं, हमें तो जैसे ठीक ही चल रही है। वो अब उनका अभिसंपात श्राप वो अंगीकार करते हैं, उनके लिए कुछ असुविधा नहीं। तो उसी प्रकार से वो ज्ञानी लोग थे, तेजी थे, इसलिए उसका अभिसंपात ग्रहण नहीं किया। वो किसी प्रकार से संसार में नहीं आए, वो अब भक्ति उनको उनके ऊपर नारद जी पर कृपा करके उनको प्रेरणा दे करके वो ला रही है, या भगवान ही को लेकर के इनसे मिलन किया बचपन में। अब वो बड़े हो गए, ये छोटे हो गए नारद जी, उन लोगों ने आकर के एक चातुर्मास का चार महीना वहां पर रहे उस गांव में जहां पर ये पैदा हुए। इनकी मैया भी इनको बच्चे को लेकर के गोदी में पहुंच जाती और इसको गोदी से उतार करके, अभी छोटा सा बच्चा, वो खेलने लगा, खेलने लगता, और वो उनके जूठे बर्तनों को साफ करके चौके को लीप पोत करके, और उनके पत्ते में जो बचा रहा था ठाकुर जी का प्रसाद, उसमें सूच लेकर के बच्चे को बड़े प्रेम से खिलाया और ये बड़े श्रद्धा के साथ में खाता। मैंने कहा जो काम बड़े सत्संग के द्वारा लाभ होता है वही वैष्णवों के पद जल पीने से चरणामृत और वैष्णवों के मुखारविंद से निकले हुए ये जूठा और दूसरा जूठा उनकी हरि कथा, यदि उसका कोई पान करे वैष्णव पद
भक्त पद
धूली भक्त पद जल, ये साधन का ये बल है भक्तों की चरण धूली। यदि भक्त वैसे हैं प्रबल भक्ति वाले उनके चरण का बहुत जल उनकी चरण धूली और उनका जुठिष्ट माने एक हरि कथा और एक दूसरी ये प्रसाद, ये साधारण चीज नहीं। ठाकुर जी के प्रसाद को कहते हैं महाप्रसाद, इनके प्रसाद को कहते हैं महा महा। तो हमारा उसी से चित्त बदल गया, इसी से चित्त हमारा बदल गया और मुझे अंदर में भक्ति की बहुत प्रेरणा हुई और मैं सोचा अब मुझको भी मंत्र लेना चाहिए। रोने लगे, 4 महीना बीत गया ऐसा चलता रहा था, हरि कथा खूब सुनते ध्यान से बैठ जाता बच्चा, सब लोग इधर उधर हो जाते और एक टक से एक कान से ही सुनने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों? वो तो जिनसे कथा सुन रहे हैं उनसे भी भक्ति मार्ग में ऊंचे हैं, किंतु दिखला रहे हैं ये साधु को ऐसा होना चाहिए। साधु को चित्र सब विदा कर इसके बाद में 4 महीने के बाद में जब जाने लगे तो बच्चे को प्यार करने लगे तो बच्चा रोने लगे। मैं कैसे आप लोगों को छोड़कर करूं? कोई चिंता नहीं, तुमको ये मंत्र दे देते हैं भगवान का इनका संग करना और इससे तुम्हारी सारी जितनी आकांक्षाएं सबने मंत्र देने के बाद में उसको भैया ने उनको स्नेह करके उसको सांप काट दिया। कौन काटवाया? भक्ति देवी ने प्रेरणा करके काल के द्वारा ये सब बनाकर उसे मैया को बचा। तो ये तो अन्याय हुआ ना, तो नहीं उसके लिए भी अच्छा हुआ। और वो दूसरा शूद्राणी थी वो भगवत भक्त होकर के कहीं जन्म ली भक्तों के घर, उसका भी कल्याण इनका भी कल्याण। तो इन्होंने माता को छोड़ करके जंगल में चले गए और कठोर साधन आरंभ किया, स्नान किया और स्नान करके एकदम ध्यान कर उनका ध्यान तो लीला मात्र अभिनय, हम लोगों जैसा नहीं, प्रयास नहीं, बस एकदम झट उनका ध्यान लग गया। कुछ दिनों के बाद में एक झलक भगवान की मिली, शंख चक्र गदा पद्म दिव्य दर्शन मिलने के बाद में अंतर ध्यान हो जाने के बाद में ये विलाप करने रह नहीं सके, एकदम उन्मत्त हो गए। कुछ दिनों के बाद में प्रभु ने उनको आश्वासन दिया, तुम खेद मत करो, दुख मत, मैं इस शरीर से अब दर्शन नहीं दूंगा, तुम्हारे अंदर में कुछ अभी अनर्थ है और ये शरीर पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार में बनता है, तो ये कर्म जनित शरीर अभी इसमें इससे अधिक नहीं होता और इसमें प्रेम नहीं होता, इसलिए तुम्हारे वो कर्म जो हैं कुछ क्षीण हो जाएंगे, इसके बाद में हम तुमको शरीर से बदल करके नित्य शुद्ध शरीर दे करके तुमको नित्य दर्शन, और तुम अवशिष्ट जीवन कृष्ण करते हुए कृष्ण नाम का बिना कर और सर्वत्र विचरण करो, समय अनुसार में काल आएगा, काल के सिर के ऊपर में सर रख करके तुम हमारे पास करना, तब नित्य दर्शन होगा, तुम सर्वत्र घूम जाते। उन्हें ऐसा ही अब वो शोक मोह छोड़ करके निरंतर अश्रु प्रवाहित नेत्रों से रुद्ध गले से कृष्ण कीर्तन करते करते नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण राधा गोविंद गोविंद दामोदर माधुरी करते हुए काल आया, समय आया, बस उसके सिर पर पैर रख करके उन्होंने अलक्षित रूप में उस शरीर को बदल दिया और फिर मैं शरीर दे करके भगवान के पहले जिस रूप में वो थे उसी रूप में अब सर्वत्र विचरण करने लगे, कभी गोलोक में, कभी वृंदावन में, कभी नारायण लोक में, कभी भूतल में, कभी उस भूतल में, कभी वहाँ, और अपने हजारों रूप धारण करके हजारों कृष्ण के अवतारों की लीलाओं में उनकी सेवा करते हैं। कृष्ण जितना स्वरूप धारण करते हैं, राम नृसिंह कल्कि वामन, स्वर्ग में उपेंद्र, वैकुंठ में नारायण,
अलग अलग ब्रह्मांडों में,
अलग अलग ब्रह्मांडों में सब जगह एक एक रूप उनका होकर के उन सब की सेवा करने लगा।
नारद जी का
सब
लीलाओं के साथ,
नंद बाबा एक नहीं है, यशोदा जी, जितने ब्रह्मांड में लीलाएं हो रही हैं वहाँ पर एक एक कृष्ण के साथ में एक एक नंद यशोदा जी का स्वरूप है और सभी एक है।
और अप्रकट में तो चल ही रहा है वो भी,
वही तो अप्रकट में तो चल ही रहा है, वहाँ पर तो ही है, यहाँ पर भी है, सर्वत्र है उनका, ये एक तरह से काय व्यूह है। जैसे कृष्ण का अवतार होता है विविध प्रकार से, 16,000 गोपियों के साथ में 16,000 रूप धारण कर लिया है और सब अपना स्वतंत्र रूप में है, किसी के आश्रित कोई रूप नहीं, ये एक हाथ उठाएगा तो सभी उठाएगा,
जोगी
लोगों का ऐसा होता है यदि 10 रूप बनाएंगे तो 10 रूप एक जो करेगा वो सभी रूप करेगा, ऐसा
नारद जी का भी ऐसा नहीं है और कृष्ण का भी ऐसा नहीं, कोई अंतर है इन दोनों के विस्तार
पर, ये जीव तत्व है और वो भगवान है, ये दास है।
तो फिर इनके गुरु
में द्वापर में भी नारद जी के हुए हैं, तो कलयुग में भी आते हैं
होंगे किसी न किसी, महाप्रभु जी थे तो उनके समय में तो श्रीवास पंडित
तो महाराज ब्रह्मा
जी नारद जी यहाँ पर हो रहे आ रहे होंगे,
ब्रह्मा जी उनके गुरु हैं, ये साधक के समझाने के लिए
बातें भी बहुत उपाय है। नारद चले जाएंगे गोलोक वृंदावन में सब में नारायण लोक में, ब्रह्मा जी अभी नहीं जाएंगे, किंतु इसके पहले वाले ब्रह्मा जो थे कितने करोड़ों ब्रह्मा तो बदल गए हैं, वो लोग तो पहुंच गए हुए, ब्रह्मा तो पद है नाम नहीं है, इनके अलग अलग नाम है, राष्ट्रपति नाम नहीं है, राष्ट्रपति कौन था राष्ट्रपति, भारत को स्वाधीन कराने के समय में पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे,
राजेंद्र प्रसाद
तो अभी कौन है, शंकर दयाल शर्मा, और वो दोनों एक हैं
नहीं,
ऐसे जिस ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद जी हुए थे अब वही थोड़े ब्रह्मा जी हैं, कितने लाखों बदल गए। तो उस पद से ले लेते हैं जो कोई जो इस पद पर अभी है वही हमारे परंपरा है, जो को भी ब्रह्मा रहे होंगे हम लोगों के वो परंपरा में, क्योंकि कृष्ण से निकले हैं ना और कृष्ण ने उनको मंत्र दिया है, कृष्ण की उन्होंने आराधना की है, वो जीव तत्व है, शंकर जी विष्णु तत्व होने के नाते हम लोगों ने उनको ग्रहण नहीं किया, उनको ग्रहण किंतु वो गुरु के रूप में उनको माना, किनको, शंकर जी को गुरु के रूप में।
शिवरात्रि जो व्रत होता है इसमें जो शिव जी हैं विशेषत्व नहीं है, और ऐसा मैंने पढ़ा था परम गुरु जी ने एक जगह कहा था कि आशीष सत्य में हम किसी का व्रत नहीं करते, उपवास नहीं करते, नहीं तो समस्त जितने गुरु हैं हमारे आशीष सत्य हैं जितने, तो क्या
ये बातें समझने की होती है। मैं विश्व को मैं किसी की बात नहीं मानता, इसका मतलब अपने गुरु को और भगवान को कृष्ण को नहीं मानते, अभी कह दिया जैसे हम अपने गुरु को छोड़ करके और कृष्ण को छोड़ करके नहीं मानेंगे तो गौरांग प्रभु की बात नहीं मानेंगे, तब उन्होंने कहा अच्छा हाँ उनको मान लें, तब नित्यानंद को क्या करेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर के ये सब कहने की ये समझने की बात है, इस रूप में समझने की, हमने कभी कह दिया क्रोधित होकर के मैं ब्रह्मा की बात नहीं मानता, इसका मतलब ये ब्रह्मा जी की बात नहीं मानता, ब्रह्मा जी जैसे और लोग हैं कोई भी हों उनकी बात नहीं मानता, यदि ये कहेंगे ये भक्ति को छोड़ दो और जागतिक नैतिकता को ग्रहण करो, शुद्ध भक्ति को छोड़ दो, महाप्रभु जी इस विचार को लेकर के देने के लिए आए थे उसको छोड़ो और ये समाज में रह करके रुपया पैसा लाओ और मस्जिद और मंदिर बनाओ और यही सब काम में लगाओ अपने जीवन, यही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। कहते तो ये ब्रह्मा जी आकर के कहेंगे तो भी नहीं, इसका मतलब अपनी दृढ़ता दिखला रहे।
बस ठीक है,
ब्रह्मा जी बड़े हैं ना, हमारे रघुनाथ दास को स्वामी बड़े हैं।
रघुनाथ दास को स्वामी
क्यों क्यों बड़े हैं? तो सृष्टि की रघुनाथ जी सृष्टि कर रहे हैं, हम तो शंकर जी की भी बात नहीं मानेंगे, रघुनाथ जी की मानेंगे। तो इसका मतलब नहीं है शंकर जी को मैं नहीं मानता, अवज्ञा कर रहा हूँ, ये बात नहीं। शंकर जी ने जिस भावना से उनकी उपासना की है साधारण दृष्टि में, हम उन्होंने लेकर के रघुनाथ दास से विचार, यहाँ पर शंकर जी से सहमत है उनके विचारों को लेकर। जो ब्रह्मा जी रुद्र शंकर जी रुद्र होकर के आए हैं, जो अद्वैतवादी शंकर के रूप में आए हैं, उनके विचार सब उनका आदर करते हैं। ये प्रभु की आज्ञा को पालन करने के लिए वैसा रूप धारण करके वैसा भी, साधारण आदमी नहीं समझेंगे, जो जिस अधिकार में है वैसे ही दास, कंफ्यूजन उसको हो जाए। और भगवान ने उनको मोहिनी रूप दिखाया।
नहीं नहीं ये वो नहीं कह रहे महाराज,
इसमें देवताओं को अमृत बांटा था और असुरों को वंचित किया, तो वो शंकर जी ने पीछे से उसी को दर्शन करने के लिए लालसा की और उनको उन्होंने रूप दिखाया। और शंकर इतने तत्वज्ञानी होने पर भी, इतने उच्च कोटि के भक्त होने पर भी मुग्ध होकर के उनके मोहिनी के पीछे पीछे चले। और ये जो गोपीश्वर जो रूप है वो कृष्ण रासलीला में बंसी भट्ट में वृंदावन में जमुना के किनारे वहाँ पर उपस्थित थे, अकेले थे, उन्होंने अभिलाषा की रास रास होगा, दृष्टा कौन होगा, एक दृष्टा सा होना चाहिए, दृष्टा नहीं होने से फिर रस की कमी हो जाएगी, इसलिए कोई दृष्टा की योग्य होना चाहिए। तो उनके दाहिने अंग से मैं बाएं अंग से श्रीमती राधिका जी और उनके साथ में करोड़ों उनकी कायद्युग गोपियां हूं। अब ये रासलीला के उपकरण एक कृष्ण हुए और एक गोपियां राधा जी इत्यादि हुई। स्थल हुआ चिन्ह में भूमि बंसीवत। अब दृष्टा कौन होगा, शंकर जैसा सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति विश्व भर में, ब्रह्मा भी नहीं जो अपने पर काबू कर सके और जिसकी वो प्रशंसा कर सके जगत में उसको दिखला सके। इसे उनके दाहिने अंग से शिवजी पैदा हुए। कौन शिवजी हुए, सदाशिव, जो सब समय सदाशिव महाविष्णु के रूप में गोलोक में उसके नारायण धाम के नीचे
महेश धाम,
महेश धाम में वो प्रतिष्ठित,
कैलाश धाम भी नहीं करेंगे,
नहीं
महेश धाम,
कैलाश धाम वाले जो शंकर हैं उनके वो अंश कला है,
कैलाश धाम ब्रह्मांड के अंदर है,
अंदर और वो है नित्य है, इसलिए दृष्टा के रूप में ये जगत में इस चीज को प्रकाश कर सके और जीवों को इधर में आकर्षित कर सके, इस रस को दिया जा सके, इसलिए दृष्टा के रूप में। और उनको रखा दूर, और दूर रख करके और इधर में रास आरंभ हुआ, ये एक रूप है। दूसरा इसमें एक रूप है, वो जो वो निकले गोपीश्वर, इनमें वो जो कैलाश वाले जो शंकर हैं वो उसमें अविष्ट हो गए इनमें, और साधकों को दिखलाने के लिए उन्होंने जोग माया की उपासना की जो माया के उपासना पर प्रकट हुए वो जोग माया प्रकट हुई और उनसे कहा क्या चाहते हो ब्रह्म ब्रूही। उन्होंने कहा कि मैं रास स्थली का दर्शन करना चाहता, यहाँ पर रास होता है, उस रास को देखना चाहिए, पुरुष रूप में नहीं जा सकते, इसलिए उनको पकड़ करके ब्रह्म हर्द में डुबा दिया। ये रंगनाथ जी के मंदिर के पास में है
ब्रह्मकुंड,
उसमें लेकर के डुबा दिया और डुबाने के बाद में परम सुंदरी गोपी हो गई। किंतु अभी कुछ गड़बड़ी थी, रास में तो वो गई, दे तो दिया किंतु ये नहीं बदला तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पति कौन है, शादी नहीं हुई, गोपियों के गर्भ से जन्म नहीं दिया,
गोपी नहीं बने थे,
अभी गोपी नहीं, अंदर से नहीं गोपी बने थे, कुछ भाव था जो मैं शंकर हूँ वही या महाविष्णु हूँ,
स्नान करके आ रहा,
इसलिए वहाँ पर उनको रख दिया जी यहीं से लीला देखना, उसके ईशान कोण में वो गोपीश्वर महादेव का मंदिर पड़ता है, वहीं पर वहीं झाड़ियों में गुलमों में छिप करके इधर रास देख रहे हैं। उसने कहा जी आज रास में आनंद नहीं आ रहा है, गोपियों ने कहा जी हमें भी नहीं रहा है, आज निरस क्यों हो गया, तो उन्होंने कहा जी कोई अयोग्य दृष्टा है जिसके अंदर में कुछ अभी शुद्धि नहीं हुई है और रस उसके अंदर में नहीं है, वो वैसी कोई देख रहा है, अब ढूंढने लगे सब लाखों करोड़ों गोपियां और कृष्ण स्वयं ढूंढने लगे। थोड़ी देर के दूर में उन्होंने देखा एक गोपी वहां पर बैठी हुई है तो बड़ी सुंदरी सब प्रकार से अलंकृत है, उन्होंने झट कहते एकदम नहीं है बिल्कुल, आज से कभी पहले देखा नहीं, बस गोपियों ने पकड़े तुम कहां से रत, तुम्हारा कौन सा गांव है,
पति कौन है,
तुम्हारा खसम पति का नाम क्या है, तुम किसकी पत्नी हो, कौन से गोप से शादी, कौन गांव में तुम्हारी ससुराल है, तुम्हारी कौन ननद है, कौन क्या है, कुछ नहीं बात, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारी मैया का नाम क्या है,
अतः बता दी,
और जब नहीं बतलाया तो कहा यही है, तुम यहाँ पर क्यों आई, कैसे आई, बस गुलचे से मार करके उसका गला फुला दिया, गाल लाल कर दिया, उस महाविष्णु के भी गोपीश्वर महाराज
रोने लगे,
वो रोने लगे, तब तक फिर उन्होंने योग माया का स्मरण किया, योग माया आई, उन्होंने कहा जी हमने इस पर कृपा की, आप लोग कृपा कर, ये इस रस का रूपी है अनर्थ, अब आप कृपा करके इसके अनर्थों को भी दूर कर दीजिए और इसका नाम आज से रख दिया जाए गोपीश्वरी, गोपियां ही जिनकी ईश्वरी है, इस रूप में रखा। और कृष्ण ने कहा जी अच्छा अब ये तुम्हारा काम रहेगा, इस वृंदावन में ब्रजमंडल में जो कोई पधारेगा उसके लिए तुम प्रदर्शन करेंगे, जब तक तुम्हारा आदेश नहीं होगा, जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी, तब तक ये गोपी भाव से कोई भी ब्रजमंडल में नहीं प्रवेश कर सकता, इसलिए उस समय से वृंदावन धाम के उस गेट कीपर जैसे रहे। यदि कोई प्रवेश करना चाहता है साधन में तो उनके शरणागत होकर प्रार्थना करने पर वो उसको इंट्रेंस का अधिकार दे, तब से उनका नाम हुआ गोपीश्वर। साधारण लोगों के नजर में गोपीश्वर महादेव ये, और भक्तों की दृष्टि में वो गोपीश्वरी होगा, ये है आपका संदेश, किसने बतलाया कृष्ण का प्रेम पहले चित्त को निर्मल कर देता है, संसारिक किसी भी अनर्थ दोष अपराध जो आत्मा को मलिन बनाए हुए है, ऊपर से मन को मलिन बनाए हुए है, उसको ये धो पोछ करके साफ कर, जिसमें अपना प्रतिबिंब और कृष्ण का प्रतिबिंब उनके रिलेशन का प्रतिबिंब उसमें रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद में जो जो ये प्रक्रियाएं आरंभ होती चलती है उसी के अनुरूप में संसार की जितनी आग है दुखों की लपटें, ये सभी शोक मोह भय ये सब धीरे धीरे दूर हो, जितना ही नाम शुद्ध होता जाएगा उतना उतने ही कृष्ण की कृपा बरसेगी और उनके कृपा से जितने शुभ हैं हमारे हृदय में अनर्थ दूर होना ही एक शुभ है, किंतु साथ साथ में कृष्ण की भक्ति का कोई जो भक्ति है अब वो निष्ठा के रूप में आएगी। धीरे धीरे जैसे कोई कली होती है वो चंद्रमा से पहले खिलती है, अध खिली फिर पूरी खिल जाती है, उसमें सुगंध सब भर जाता है, उसमें मधु आ जाता है और जगत को अपने ये सुंदर सुगंध से भर जाता है। ऐसे ही नाम की कविता पहले उत्पन्न होती है, इसके बाद में थोड़ी कुछ विकसित होती है, इसके बाद में और कुछ विकसित हो जाती है, अर्थात तो भगवान का पहले नाम करते 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 भगवान का रूप, फिर उनका परिकर के समेत और फिर उनके लीला परिकरों का वो दर्शन करते हैं। यहाँ तक तो कैरवर चंद्रिका, अब इसके बाद में कैरवर चंद्रिका विकरण विद्यावधि भक्ति को इतना प्रकाशित कर देता है।